Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna,
speed,
Hare Krishna,
speed.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Everybody
Krishna, Krishna, Hare Hare
Don't lose the chance
Hare Rama
to call from the heart
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare
Karo
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जैसे हम दही का मंथन करते हैं और दूध का सार मक्खन के रूप से निकालते हैं उसे उसी तरह से हृदय के भाव का मंथन कीजिए और उसका सार भगवान को अर्पण कीजिए मक्खन की तरह। ट्राई योर बेस्ट।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hey Karuna Nidhan Hey Karuna Mayi Sudha Pita Subhanu
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
एकाग्र कीजिए और भगवान को पुकारिए। एक ही सहारा है उसके नाम का। सुन रहे हैं वो श्री बरसाना वृंदावन धाम में सुनने के लिए बैठे हैं। आप पुकारिए मन को एकाग्र कीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna,
call out
Krishna,
from the bottom of the heart.
Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna,
Sri Radhika, Subhanallah, Karunamayi, Daya Karo,
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, 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 Hare Hare.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे आखिरी बार पुकारना है आखिरी टेर है हमारी
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हे गोपाल हे राधे मारी पुकार सुनो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोलो बोलो श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी की श्री अंजनपुर वन की श्री अंजन बिहारी जी महाराज की श्री राधा अंजन बिहारी जी की श्री किशोरी कुंड की निथाई गौ प्रेमानंदे जय जय श्री राधे बहुत धन्यवाद सबका सबके संग का एक सहायता होती है एक लाभ होता है जब हम संग में पुकारते हैं तो सभी के इकट्ठा भाव का कलेक्टिव लाभ हमको होता है अकेले पुकार रहे हैं तो हजार लोग पुकार रहे हैं तो 999 लोगों का भाव आपके एक भाव में मिल जाता है और भगवान तक पहुंचता है सत्संग जो है बहुत कीमती वस्तु है हमारे मन में भक्तों के प्रति चाहे मतभेद हो या नापसंदगी हो फिर भी भक्त लोग बहुत कीमती होते हैं हमारा मतभेद होने पर भी वो जब कीर्तन करते हैं तो उनके भाव का सहारा आपको मिल जाता है इसलिए हमें भक्तों का हमेशा ऋणी होना चाहिए और संकीर्तन का मतलब है जो एक साथ आकर भगवान को पुकारते हैं संगीतमय रीति से उसको संकीर्तन कहते हैं और भगवान कहते हैं कि जहां पर मेरे भक्त मुझे आकर एक साथ पुकारते हैं वहीं मैं रहता हूं मेरा निवास वैकुंठ में नहीं है ना मेरा निवास योगियों के हृदय में है यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा इसलिए भक्त लोग बहुत जरूरी है ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बताते हैं कि भक्तों का संग बहुत कठिन भी है, क्योंकि उसमें अपराध भी हो जाता है अगर हम लोग मैच्योर नहीं है और गलतियां दिखते रहते हैं, तो फिर हमारी तरफ से अपराध भी होता है और नुकसान भी हो जाता है। लेकिन फिर भी इस अपराध की डर से सावधानी से बचकर हमें भक्तों का संग जो है करते रहना चाहिए। अगर दवा कड़वी भी है लेकिन उसको लेते रहना चाहिए। इसलिए आप सब भक्तों को हम धन्यवाद करते हैं। अगर हम अकेले बैठ के कीर्तन करते हमें बिल्कुल उसका कुछ भाव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन आप लोग सब साथ में हैं, आप सबका भाव जो है उसका लाभ हमें हुआ है और इस तरह से हर व्यक्ति को भी हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ पर हर व्यक्ति का धन्यवाद करेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। साथ साथ हमारे सबके साथ धाम का भी सहारा है, हम धाम की रज में बैठे हैं। जिस रज से केवल स्पर्श मात्र से कृष्ण प्रेम के दीपक का हृदय में उदय होता है। इसलिए कहा गया है कि जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है उसमें भी एक बहुत दुर्लभ वस्तु है, वह संतों का संग, भक्तों का संग। जो भगवान पर निष्ठा रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो भगवान के नाम को जपते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों का संग मिलना बहुत जरूरी है। और उसमें भी प्रामाणिक भक्तों का, सिंसियर डिवोटीज का संग मिलना वह और मुश्किल है। उससे भी आगे जाकर संत जो है वो शुद्ध हृदयी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका भक्त दर्शन मिलना, संग मिलना बहुत मुश्किल है। और जब तक हम किसी शुद्ध भक्त का सहारा नहीं लेते हैं जीवन में, हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। माँ और पिताजी की तरफ से हमको ये शरीर प्राप्त होता है। हाँ, ये जो नक्शा दिख रहा है आपके सामने डिजाइन, ये माँ और पिताजी के द्वारा दिया गया है। लेकिन उसके बाद में जब गुरुजी का संग होता है, उनका अनुग्रह होता है, तो हमारा दूसरा जन्म होता है, उसको कहते हैं द्विज। और बिना दूसरी बार जन्म लिए मनुष्य का जीवन पूरी तरह व्यर्थ है, आए और गए। जीवत शव समान, अगर हमें गुरु का सहारा नहीं है, इसलिए इसी जीवन में हमें श्री गुरुदेव को ढूंढना है। अगर हमारे जीवन में गुरुदेव नहीं है तो हमें ढूंढना है जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए सहायता करेंगे भगवान की ओर। जब तक वो हमें अनुग्रह नहीं करते हैं, जो हमें स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। कितना भी भजन करेंगे, जैसे कितने भी खत लिखेंगे, लेकिन पोस्ट बॉक्स में डालेंगे नहीं तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, और किसी और बक्से में डालेंगे रास्ते में तो भी नहीं पहुंचेगा। आपको सही बक्से में डालना है, जो ऑथोराइज्ड बक्सा है, अधिकृत कहते हैं उसको, जहां डालने से ही इच्छित स्थान पर वो पहुंच जाता है। इसलिए सब लोगों को आज आपका यात्रा का आखिरी दिन है, इसमें से 70-80 लोगों ने 10 दिन तक बहुत बढ़िया सेवा किया है ब्रजवासियों का, उनकी कृपा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स प्राप्त किए हैं। तो आपको भी सोचना है कि अभी ये जो संग प्राप्त हुआ है यहाँ पर धाम का, ब्रजवासियों का सेवा प्राप्त हुआ है, उसे कैसे जीवन में आगे उसको इस्तेमाल किया जाए। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि ये जो भाव यहाँ पर आप अपनाते हो, जो यहाँ पर स्वतः उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उस भाव को आप बिल्कुल संभाल के रखिए एक हीरे की तरह, और उसको बंबई जाके उसको अनुभव कीजिए, उसको वहाँ बढ़ाइए। जब यहाँ का भाव, सेवा का और भक्ति भाव जो हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो हम वहाँ पर जाके उसको बनाए रखने में समर्थ रहे, सफल रहे, तो एक तरह से आपका यात्रा जो है दुगुना, चौगुना, हजार गुना हो सकता है। यहाँ से जाने के बाद भी आप धाम में रह सकते हो, यहाँ के भाव को वहाँ पर लेके जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, कुछ हरियाणा जाएंगे, बम्बई जाएंगे, कुछ लंदन जाएंगे। सभी लोगों को ये सोचना है कि कैसे हम यहाँ का भाव जो है वहाँ बनाए रखें, किस तरह से उसको बढ़ाएं। जैसे आग से चिंगारी निकलती है तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, तो सोचना है कैसे उस चिंगारी को बनाए रखना है, कैसे उसकी ज्वाला बनानी है उसके जाके। नहीं तो हमारे जीवन में क्या लाभ है बाकी सब? अरे धन कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, नाम हो रहा है, इज्जत हो रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, सब खत्म होगा। बूढ़े हो रहे हैं हम सब लोग, हम हाँ, तो जो सोचते हैं कि बच्चे हैं वो भी बूढ़े हो रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, 2 ईयर ओल्ड, इस 3 ईयर ओल्ड, इस 3 ईयर यंग नहीं बोलते हैं, 3 ईयर ओल्ड। सब लोग जन्म के बाद मृत्यु की ओर बहुत स्थिर गति से निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। तो क्यों जीवन व्यर्थ करना है, इस जीवन में बाकी रखा ही क्या है, वैसे सब कुछ छीन जाने वाले वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं हम लोग, देते वक्त ही बोल मालूम होता है कि ये जो वस्तु है ना, ये आप जाने वाली है, संभाल के रखना उसको, लेकिन जाएगी निश्चित, कितना भी संभालेंगे तो। ऐसी वस्तु को प्राप्त करो जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मेरा भाई भजन में बोलती है कि भगवान की भक्ति का धन जो है वो कोई चोर लूट नहीं सकता है, इतना भी आप कोशिश करें तो लूट नहीं सकते उसको। सॉक्रेट्स को बताया था कि आपको विष पिलाएंगे, आपको मार डालेंगे, तो सॉक्रेट्स ने कहा था फर्स्ट कैच मी देन किल मी, क्योंकि आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। मेरे शरीर को आप मार सकते हो लेकिन आत्मा को चुने सकते हो। तो मेरा भाई ने कहा कि ये धन जो है भक्ति का, राम रतन धन, ये राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति का धन जो है वो कोई लूट नहीं सकता है, और किसी को देने से ये घटता भी नहीं है। अगर आपसे 50 रुपये हम लेते हैं, 20 रुपये की जलेबी खाते हैं तो 30 रुपये बचेगा ना, और कुछ रबड़ी खाएगा तो और खत्म हो जाएगा, और कुछ देर बाद में जीरो हो जाएगा वो। ये धन ऐसा है कि आप किसी को दोगे तो आपका बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, 1+1=11, समटाइम्स 1-1-1, समटाइम्स 1-1-1-1-1 हो सकता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, ये यहाँ के PhD मैथमेटिक्स के दिमाग में नहीं पड़ेगा, दिस इज डिफरेंट मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स इज डिफरेंट देन मटेरियल मैथमेटिक्स। और दिन दिन बढ़ते जाए, जितना आप करोगे उतना बढ़ते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा धन हम अपनाएं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, काल में शक्ति नहीं है ये धन छीनने की, ये सोच लीजिए सबसे बड़ी बात। जब मृत्यु आता है काल के रूप में हमसे सब छीनने के लिए, वो भी इस वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता है। यम दूत तो वहां पर पहुंचते ही नहीं है जिस जगह भगवान का नाम का कीर्तन होता है, उनको अधिकार ही नहीं वहां पहुंचने का। तो बुद्धिमानी यही है, सार असार बुद्धि या सद सद विवेक बुद्धि का मतलब यही है कि उस धन को जमा किया जाए, संचय किया जाए जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। अगर कोई भक्त है और कोई नास्तिक लोग बोले उसको बांध बांध के उसका मुंह पट्टी लगा देते हैं, उसको सब तरह से बंद करते, उसकी आंखें बंद, उसका सब कान बंद कर देते हैं, फिर भी मन के अंदर भगवान को पुकार सकता है वो, उसे रोक नहीं सकते कोई। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में कोई भौतिक बाधा नहीं है, सारे बंधन संकट होने पर भी हमारी भक्ति बढ़ चलती रह सकती है, इट इज अनइंटरप्टेबल आइटम, इसको रोकना किसी भौतिक शक्ति के बस में नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग इस धन को बटोरने में, बनाने में, बढ़ाने में लगो, ये हमारा मेन बिजनेस है। हाँ, दिस इज द प्राइमरी बिजनेस ऑफ मटेरियल ह्यूमन लाइफ, सॉरी मनुष्य जीवन का ये प्रमुख प्रधान व्यवहार है, व्यवसाय है। बाकी जो हमारा प्रपंच है, पति पत्नी का परिवार, धन कमाना, जो भी लौकिक काम है, वो हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। लेकिन माधवानंद प्रभु बता रहे थे उस दिन कि हमने सेकेंडरी बिजनेस को एकदम प्रधान प्रधान बिजनेस बना दिया है, और समय मिलेगा तो फिर हम देखेंगे, हो सकती तो करेंगे भक्ति, टाइम नहीं मिलता है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये जगह है जहां पर अपना निश्चय जो है हम कर सकते हैं कि हमारा जो प्रधान बिजनेस है उसको प्रधान जगह पे रखेंगे। To keep the priority in place, not to get diverted. कुछ लोग कहते हैं कि जब हम यहां रहते हैं तो हमारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, और बॉम्बे जाते हैं तो अपने डिस्चार्ज हो जाती है, क्या करें। हमारे भाई साहब बोलते हैं हमको हमेशा, जब तक हमारे साथ में रहते हैं, इधर यात्रा में रहते हैं तो फुल चार्ज रहते हैं, लेकिन घर जाते सब भूल जाते हैं, क्या कारण है उसका। क्योंकि जो सत्संग हमें आवश्यक है इसको बनाए रखने के लिए, वो हम नहीं करते वहां जाके, फिर बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी ना। अभी हम लोग बैटरी लेके देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको वापस चार्ज करना पड़ेगा ना, फिर चलेगी वो। आप देख रहे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस चार्जिंग हो रहा है उनका, इसलिए वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो वैसे भगवान से संपर्क रखना है कॉन्स्टेंटली, तो घर में भी जाने के बाद में रेगुलर सत्संग होना चाहिए नियमित रूप से, चाहे रोज ना हो लेकिन हफ्ते में एक बार हो, हफ्ते में 2 बार हो, महीने में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, जो भी नियम बना के रखा है। जैसे हम कैसे नियम से खाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, अब धाम में जब रमजान बहुत सारा खाते हैं, घर में जाने खाने को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा होता है कभी? घर में जाकर बराबर ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे करते हैं, इंक्वायरी करते हैं बना कि नहीं बना, वो कैसे याद रखते हैं हम लोग? अरे धाम में हम लोग को अच्छी नहीं जाते, बॉम्बे में सोते ही नहीं, बॉम्बे में जाके बड़ा बढ़िया सोते हैं टाइम पे एकदम फर्स्ट क्लास। तो जो शरीर की जरूरतों के लिए हम लोग करते हैं बिना किसी को बोलना नहीं पड़ता है अपने को ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सब जगह संख्या कम रहती है लेकिन प्रसादम हॉल में पूर्ण संख्या रहती है। कभी भी देखो आप किसी मंदिर में जाएंगे ना तो मंगल आरती में आपको कुछ भक्त मिलेंगे, दर्शन आरती में कुछ भक्त मिलेंगे, कथा में कुछ और मिलेंगे, सबको मिलना है प्रसादम हॉल है ना। शादी में भी देखो आप दूल्हा दूल्हे के पास कुछ लोग मिलेंगे, हॉल में कुछ लोग मिलेंगे और किधर कुछ मिलेंगे, लेकिन डाइनिंग टेबल पे सब मिलेंगे एकदम। दूल्हा दूल्हे को मिलने नहीं जाएंगे लेकिन डाइनिंग टेबल में जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उसी तरह भगवान के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन यशस्वी हो जाएगा। जितनी लगन हमारी अपने भौतिक जीवन में है, धन कमाने में है, पैसे में है, उतनी लगन अगर भगवान में लग जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हर एक आदमी को पता है कि हमारा दिल कितना पैसे में है, कितना परिवार में, सबको मालूम है ना। हाँ, सबको ये पता है कि हमारा जो प्राइम बिजनेस है इसमें धन कमाने का है, मनी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में रखते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले रखते हैं, लेकिन भगवान की प्रायोरिटी उसके भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उनको नंबर वन प्रायोरिटी पर रखेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर उनको आपने दिल से हृदय से प्रामाणिकता से जीवन के नंबर वन स्थान पर प्रधानता के रखा है तो आपकी सारी जो बाकी की प्रधानताएं हैं प्रायोरिटीज हैं वो पूरी कर देते हैं। आप उनको रखे तो देखो, यू ट्राई योर बेस्ट। हमारी नर्तकी माता जी जो भगवान की वहां पर सेवा करें ना, वो आज 30 साल से अकेली हैं, कोई नौकरी नहीं करती, हो कोई बिजनेस नहीं करती है, केवल भगवान की सेवा करती है। और मैं भी उनको आश्चर्य से देखता हूँ कैसे भगवान का गुजारा कर रहे हैं। हमारे एक और प्रभुपाद के शिष्य हैं वयास के प्रभु और उनकी पत्नी, केवल हरिनाम कीर्तन करते हैं, वो केवल हरिनाम कीर्तन करते हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ दुनिया भर में घूमते हैं और भगवान, और कोई बिजनेस नहीं करते, कभी कभी अपना सीढ़ी कीर्तन का वही है उसको बेच देते हैं, लेकिन सारा उनका लालन पालन जो है योगक क्षेमम वहाँ में हम, भगवान ने वादा किया है। आप करके तो देखो, नहीं हुआ तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। मेरे एजेंट से नहीं, खुद करता हूं मैं। जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है, मेरा अनन्य चिंतन करता है, मेरे में ही बसा रहता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अरे रोटी सब्जी का तो छोड़ ही दो, आपका सारा कल्याण का जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या हरी हरी करने से रोटी मिलेगी? क्या मिलेगी? कोशिश तो करके देखो। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम लोग श्रद्धा के बिना बोलेंगे हरी हरी करके तो भगवान क्यों रिस्पॉन्स देंगे? क्योंकि हमारे नौकर नहीं है भगवान, वो श्रद्धा पे रिस्पॉन्स देते, श्रद्धा है तो उसका प्रतिसाद देंगे। अगर आपका बच्चा आपको बोलेगा पिताजी आप पे मुझे विश्वास, मेरा विश्वास नहीं, आप कुछ नहीं करने वाले हो, तो आपका ठीक है नहीं करूंगा। जवान बच्चा हो गया वो पिताजी को गाली दे रहा है, आप क्या कर पाओगे, क्या किया आपने, क्या मुझे पढ़ाओगे, आप क्या लोन लोगे, मुझे MBBS में डालोगे, ठीक है नहीं करता हूँ, जाओ किस कहीं जाओ। और आप पिताजी आके बच्चा बोलेगा पापा आप ही मेरे सब कुछ हो, जो भी हो मैं आपके शरण में हूँ, आप जहाँ डालना पढ़ाई करना है, तो पिताजी कितना प्रेम से करेंगे आपके लिए। हाँ, जैसे बालक रूप में आपसे किया है, आपने कुछ अप्लाई नहीं किया था उनके पास कुछ भी, लेकिन आपको संभाला है, बड़े होने पर भी संभालेंगे अगर प्रेम से करेंगे। तो इसलिए हमको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होना चाहिए। निष्ठा मतलब क्या? अनशेकेबल फेथ, जिसको कोई हिला नहीं सकता है। श्रद्धा जो है कोमल होती है, कोई भी आके उल्टा बोलेगा तो कोमल श्रद्धा जो है टूट सकती है, लेकिन जो निष्ठा होती है वो हिल नहीं सकती है। कितने भी संकट आने के पश्चात, कितनी भी कसौटियां और टेस्ट होने के पश्चात भी वो नहीं हिल सकती, उसको निष्ठा कहते हैं। और वो निष्ठा को भगवान रिस्पॉन्स देते हैं, वो है, ये भी हमको अनुभूति होती है कि वो है, उनका हाथ हमारे जीवन में सब चीजों में लगा हुआ है, उनके सहारे हम चल रहे हैं, ये अनुभूति भगवान के भक्त के हृदय में होती है। इसलिए वो कभी डगमगाता नहीं है किसी भी संकट में, कितने भी भयंकर टेस्ट में, कसौटी में, परीक्षा में, भगवान का भक्त जो है वो कभी डगमगाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है मेरे पीछे भगवान का सहारा है। और वो जहाँ सहारा का विश्वास उसको है, इसलिए उसकी अनुभूति भी उसको होती है सहारे की, फिर और उसका विश्वास बढ़ता है, फिर और वो सहारा लेता है, फिर और उस सहारा मिलता है। ये ऐसे परपेचुअल साइकिल है, ये इस तरह से चलते रहता है। तो आप सबको विनती करते हैं कि आप सब लोग धाम में आए हैं, ये धन यहाँ से लेके जाइए। हाँ, बाकी सब कुछ तो यहाँ पर भगवान ने सब कुछ दिया है हमारे लिए, लेकिन ये हमको बटोरना है अपने हाथ से। तो कितना अच्छा वातावरण है, पवित्र वृक्ष है कदम के, हाँ नीम के, किशोरी कुंड है आपके सामने, भक्तों का संग है, कोई टेंशन नहीं है अगली रोटी कहाँ से आएगी उसका इंतजाम भी किया गया है। हर तरफ से एकादशी का उपवास है आज, इतना पवित्र दिन है, एकादशी के दिन हम धाम में बैठे, इतना बढ़िया। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि हजार गुना यहाँ पर आप कुछ करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, एकादशी के गुना दिन में और उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, भगवान ने एकदम ग्रैंड सेल खोल कर रखा आपके लिए, हर जगह सेल ही सेल, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। आप खाली थोड़ा सा लगा दो उसके अंदर अपना, फिर मल्टीप्लाई होगा ना। अगर आप जीरो लगाएंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 1000 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख जीरो, नहीं कुछ आपका जोड़ दीजिए उसके अंदर, फिर मल्टीप्लिकेशन में मजा आएगा ना। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1000 जीरो होंगे तो उसका वैल्यू जीरो ही है। आप अपना लगाइए, कुछ ना कुछ थोड़ा लगाइए उसके अंदर, फिर देखो क्या मजा आता है। तो भक्तों के जीवन में आनंद इसीलिए रहता है क्योंकि वो हमेशा अपना 100% भगवान की सेवा में जुटाते रहते हैं, और वो जुटाने के पश्चात भगवान उनको अपने गोद में लेते हैं। कितनी ऐसी कहानियां हैं, एक अर्जुन दास, अर्जुन आचार्य करके भक्त थे और वो भगवत गीता पढ़ते थे हमेशा, वो भगवत गीता के आचार्य थे। इतने गरीब थे ब्राह्मण बेचारे, वो इतने निर्धन थे, फिर भी श्रद्धा से वो अपना कर्तव्य ब्राह्मण का करते थे। एक दिन के घर में इतनी मतलब गरीबी हो गई कि ना एक अन्न का दाना भी नहीं घर में, ना नाश्ता है ना लंच है, कुछ है ही नहीं, कुछ घर में साधन ही नहीं कुछ। और वो दिन भी किताब पढ़ रहे थे वो, और पढ़ते 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 उस श्लोक पे आए वो, अनन्यस चिंतयंतो माम यो जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे अरे, मैं इतने दिन से अनन्य भक्ति कर रहा हूँ और मेरे को खाने को रोटी भी नहीं मिल रही, बोले तो ऐसे शायद ये गलत हो सकता है, इसमें वो थोड़ा काट लगाते इसके ऊपर। तो योगक्षेमं वहामि अहम् नहीं, और कोई कर सकता है, वो खुद नहीं करते हैं, वो काट लगाते हैं और जमुना जी में स्नान करने जाते हैं। जब जमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो घर में उनके दो बालक आते हैं ऐसे कटोरी भर के सर पे, सब अच्छे अच्छे फल, दूध, चावल और सब मसाले और सब ड्राई फ्रूट्स और मेवा सब भर के चलाते हैं, ऐसे ऐसे लड़खड़ाते हुए आते हैं। मैया, तो मैया आती, बाहर कौन आया है, बहुत कमजोर है वो, खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो बहुत भूख के मारे भी वो भी कमजोर है, पूछते कौन है बेटा, बताइए आपके पति देव ने हमको भेजा है सामान लेके। अच्छा, तो बहुत भारी है, जरा उठा लो उसको, आप कौन हो, तो हम आपके पतिदेव के शिष्य हैं, तो जमुना किनारे गए वहाँ से उन्होंने हमको सामान दिया है, तो आप उसका भोजन बना लीजिए। तो सामान उतारा उन्होंने और वो बैठने की तैयारी में, वो जल्दी जाना है, तो मुड़ जाते हैं, तो मुड़ते ही उनके नजर आता है कि उनके पीठ पर ऐसे लाल लाल दाग, ऐसे कोई चाबुक से मारा हो या कोई ऐसे कोई तेज वस्तु से उनको उसे खरोच दिया हो ऐसे पीठ में, कमरे में स्क्रैच ऐसा हेवीली विद सम पिन और सम थॉर्न। अरे बेटा ये क्या हुआ है, मतलब कुछ नहीं, वो हमारे गुरुदेव आपके पति देव जो है ना, वो थोड़ा सा नाराज थे हम पर, इसलिए उन्होंने हमको पीटा है जरा, इसी के निशान है। कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो गुरु महाराज है हमारे, कृपा है उनकी, लेकिन वो आपको सोचना नहीं, वो कोई बात नहीं, आप ये जो लिया है उसका बनाना अच्छी तरह से, आएंगे अभी स्नान करके भोजन करने के लिए, चले जाते हैं, एक मिनट के लिए बैठते नहीं। फिर कुछ देर बाद स्नान करके उनके पतिदेव आते हैं, तो आते दूर से उनको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन की खुशबू आने लगती है। भाई कहाँ से आ रही, हमारे घर में तो कुछ है नहीं, शायद किसी बाजू के घर में कोई मेजबानी, कोई समारोह, कोई उत्सव होगा, इसलिए कुछ बनता होगा माल अच्छा। तो आते तो अपन समझता उनके घर से आ रही खुशबू, उनकी पत्नी रसोई में बिजी है, अरे कई दिन से रसोई में कुछ काम ही नहीं था, रसोई में बिजी कैसी हो गई। तो देखते हैं तो कई व्यंजन बन रहे हैं और दिव्य सुगंध आ रही है। तो अरे पूछा ही उनको, क्या है, कहाँ से आया सामान, अरे आपने तो भेजा था, आपके शिष्य आए तो दो, उन्होंने बहुत टोकरियाँ भर भर के सामान ला के दिया है। अरे कहो, मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने किसी को, मैं तो नदी में गया स्नान करके आया। नहीं, वो बोल रहे थे कि हम आपके शिष्य हैं आपके पतिदेव के और आप उन्होंने भेजा है इसलिए वो, बोला कहाँ है वो, बोला रुके नहीं वो तुरंत चले गए, बोला कैसे थे वो, अरे हाँ बताओ बताओ कैसे थे, बोले एक सांवला सा था एक गोरा सा था। अच्छा और एक बात देखा मैंने आपको, इतने आप दुष्ट कैसे हो गए, इतने सुंदर बालक थे कोमल, उनको आपने मारा, आपने किसी तीखी वस्तु से उनको खरोचा आपने, कैसे आप गुरु हो आप, बोले मैंने कुछ नहीं किया है। तो उनको अचानक गद में अनुभूति होती है, ये वो कृष्ण बलराम थी, एक सांवला सा था एक गोरा सा था। अच्छा थोड़े ध्यान में आते हैं उनको कि मैंने गीता में जो किया था ना वो पेंसिल से ऐसा काट दिया था ना उसको, क्योंकि भगवत गीता भाई भगवान का शरीर है, भगवत गीता जो भगवान की वाणी है वो भगवान के स्वरूप के सरा जैसे हैं, पर उन्होंने काट लगा दिया, तो वो काट जो लगा दिया वो निशान थी भगवान के पीठ पर, भगवान ने ये साबित कर दिया कि मैं स्वयं करता हूँ, किसी एजेंट को भेजता नहीं हूँ, मेरे भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। तो उन्होंने पूरा उसको साफ करके फिर वो श्लोक वैसे ही लिखा और उनको भगवान ने अनुभूति दिया। कभी कभी होता है ऐसे, भक्ति करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हमारी डगमगाती है, कुछ कसौटी होती है, कुछ संकट होता है, तो वैसे ऐसे हो जाता है, उस समय भगवान सहारा देते हैं, बचाते हैं हमको। तो उनको विश्वास होना चाहिए, भगवान जो भी कह रहे हैं वो ऐसा कुछ ऐसे किसी को पटाने के लिए किसी को उल्लू बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जब वो बोलते हैं सत्य है वो, इसलिए वो बोलते हैं अर्जुन को बोलते हैं कि तुम एक डिक्लेयर करो, प्रतिजाने ही कौंतेया नमे भक्त्य प्रणश्यति, मैं तो ना बहुत ऐसे कभी कभी कुछ ऐसे छल कपट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता हूँ, लेकिन आप तो मेरे भक्त हो, आप बताओ, आप ऐलान करो कि प्रति जाने कौंतेया नमे भक्त्य प्रणश्यति, जो मेरा भक्त कहता है मुझे अपने आप को, उसे मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ, कभी उसका विनाश नहीं होता है, और वो मेरे शरण में आया है तो मेरी मैं रक्षा करना मेरा फर्ज कर्तव्य है, मैं करता हूँ रक्षा उसकी। उनको विश्वास होना चाहिए कि हमको बचाएंगे। अरे वो तो सृष्टि के मालक है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति है वो, अगर कोई सहारा लेता है कमजोर व्यक्ति का तो फिर उसका गलत काम हो सकता है, कोई सक्षम नहीं है। और दूसरी वस्तु ये है कि वो हमसे प्रेम भी करते हैं, केवल ऐसा ऑफिशियल शक्तिमान व्यक्ति नहीं है, पुलिस नहीं है वो, पुलिस डिपार्टमेंट उनका शक्ति है लेकिन पुलिस आप पर प्रेम नहीं करती, इसलिए आपका कुछ केस होगा तो सहायता नहीं करती आप। लेकिन ये ऐसे शक्तिमान व्यक्ति है कि शक्तिमान तो है ही, सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, लेकिन ऑल लविंग भी है, सबसे प्रेम भी करते हैं वो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति हो और आपसे प्रेम भी करता हो तो आपको क्या चिंता की बात है। लेकिन हम लोग दुनिया के जो सो कॉल्ड तथाकथित स्ट्रांग लोग होते हैं उनका सहारा लेते हैं और उनके उनको भी समय पर टूटते हुए देखते हैं। हाँ सब समय आता है तो कोई काम पे नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है उस समय, इसलिए हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए। भगवान हमारे जीवन की सारी कमियां पूरी कर देते हैं, को लगता होगा ये नहीं, अरे इतना मेहनत किया अभी तक हमको इतना धन है, वो देखो मेरा कलीग जो है इतना पैसा कमाता है, अरे वो देखो इतना तंदुरुस्त है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, क्या फायदा है भगवान की भक्ति करते। तो लोग सोचते रहते हैं हमेशा, खास करके संकट के में सोचते हैं, अरे मुझे ही क्यों, वाई मी ओनली, वो क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं, वो पाप करता है, वो इतना भजन भी नहीं करता है, मैं रोज मंगलारती जाता हूँ, मुझे क्यों। क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं भगवान से, एक्सपेक्ट करते हैं मन के अंदर कि मैं मंगला जाता हूँ रोज जपा करता हूँ तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अंदर सूक्ष्म ऐसी हमारी अनजानी इच्छा रहती है कि जब मैं भजन करता हूँ तो मुझे नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए, सब सोचते हैं हम लोग ऐसा। ये भी एक बिजनेस है, हम जानते नहीं कि हम बिजनेस करके हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये प्रवृत्ति है ना, जन्म जन्मांतर तक वही करते आए हम शरीर को लेकर। लेकिन ये सोचना ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ रहना चाहिए कि जो भी वो करते हैं अच्छा ही करते हैं भक्त के लिए, कभी भी बुरा नहीं करते। हमको ये बुरा लगेगा, हमारी इंद्रियों को दर्द होगा उसका, जैसे कोई बालक को अगर माता कड़वी दवा पिलाती है तो बालक सोचता है कितनी क्रूर माता है। हाँ ऐसी कोई माता होती है, इतनी कड़वी दवा देती है, मुझे तो लड्डू अच्छे लगते हैं, बर्फी अच्छी लगती है, मुझे कड़वी दवा दे रही है, कैसी क्रूर माता है ये, क्या ये माता है, ऐसा बालक सोचता है। फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाती है और बोलते हैं ये चार लोगों को आओ इसको पकड़ो। चार लोग तो तंगड़ी पकड़ते हैं, दो हाथ पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, सुई लगा देते हैं उसके अंदर। बोले क्या क्रूर माता है ये, पहले अकेले करती थी अभी चार लोगों को साथ में लेके जाती है। लेकिन वो क्या कर रही है, वो आपके परम कल्याण की बात कर रही है, इसलिए उसने कोई संकोच नहीं, उसको चार लोगों को बुलाने में पकड़ना, होने दो दर्द उसको, चिल्लाने दो उसको, लगाओ डॉक्टर साहब आप लगाओ। वही बालक जब बड़ा होता है तो समझता है कि माता ने ऐसे क्यों किया था, अगर वो इंजेक्शन वहां नहीं लगाती तो आज मैं जीवित नहीं होता। मतलब क्या हुआ उसमें और स्थिति में क्या अंतर है, ज्ञान हो गया उसको, जो बड़ा हो गया मतलब उसको ज्ञान प्राप्ति हुई, समझ में आया उसको क्या हो रहा है। उसके बाद में जब बड़ा होने पर सुई लगाने का समय आता है तो वो माता को लेकर जाता नहीं इंजेक्शन देने के लिए, खुद जाता है डॉक्टर साहब लगा लो, चार लोगों की जरूरत नहीं आप बैठो आराम से, है ना। एक ज्ञान का लक्षण है कि वो स्वयं जानता है, फिर वो उस इंजेक्शन का दर्द स्वयं सर सहने में समर्थ हो गया, वो इच्छा से वो सहन कर लेता है। तो यही एग्जाम्पल है जो नौसिखिया भक्त है जिसको अनुभव नहीं है श्रद्धा नहीं है, वो बालक की तरह है, वो कोसते रहता है, वो बालक माता को लात से मार देता है, मुंह से मुंह में थूक देता है, कभी दवाई उखा उल्टी कर देता है, वो बालक मतलब जो नौसिखिया भक्त, अभी उसको श्रद्धा नहीं है। और जो बड़ा आदमी जो बन गया है उसको मतलब क्या है, वो मंझला हुआ खिलाड़ी है अभी, वो उसको मालूम है कि ये सब भगवान की दया से हो रहा है। भगवान जरूर संकट भेजते हैं उस वक्त के जीवन में भेजते हैं जिसको वो प्रेम करते हैं, उसको कसौटी करते हैं, मतलब उसका सोना जो है ना उसको और चमकाने का प्रयास करते हैं। सोने को जब तक अग्नि से नहीं उतारते हम लोग तब तक सोना का सोनापन जो है स्वर्णपन जो है वो चमकता नहीं है, प्रकट नहीं होता है। इसलिए भगवान पर श्रद्धा करना चाहिए। जब भगवान का नाम जप कर दिया प्रमोशन हो गया, अरे बड़े बच्चे भगवान हमारे, और मैं 16 माला करूंगा 32 माला करूंगा रोज और प्रमोशन हो जाएगी। हाँ केवल अच्छे अच्छे के लिए हम लोग भगवान का भजन नहीं करते, हम कहते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वो करो, वो मेरे लिए बुरा लगता हो दर्दनाक लगता हो लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है वही करते रहो। जो हीरा होता है ना, हीरा जो कान से निकालते हैं उसको बहुत ऐसा क्या कहते हैं उसको, इरेगुलर होता है बहुत, वो उसको बहुत काटना पड़ता है, उसको डायमंड कटिंग मराठी में कहते हैं पहलू, उसको पहलू निकालते हैं उसके, वो हीरे के दो होता ना हीरे का जो मटेरियल होता है उसको वो काटने का दर्द सहन करना पड़ता है, तब जाकर हीरा जो है वो हीरा बन जाता है, पहनने योग्य हो जाता है, चमकदार बन जाता है और वो लोगों की शान बनता है। पत्थर का भी ऐसा ही होता है, पत्थर ऐसा पड़ा हुआ कौन पूछता है उसको, जब पत्थर को केले से ठोक ठोक के जब मूर्ति बनती है तो सब लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान उसमें आविर्भाव कर लेते हैं संत लोगों की कृपा से, फिर रोज उसकी आरती उतारते हैं, रोज उसको तेल लगाते हैं, रोज उसको फूल चढ़ाते हैं, उसकी भोग लगाते हैं। कभी एक दवाने पत्थर था वो, लेकिन जब उस पत्थर ने सारे जो कीलों का घाव सहन करके जब एक आकार बना दिया तो भगवान की उसमें आविर्भाव हो गया। हम भी ऐसे ही पत्थर की तरह हैं, जब भगवान की कृपा के कीले हम पर आएंगे तो हम लोग एक दिन उनके धाम में जाने के योग्य हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम भजन करते हैं, कहते हैं कि जो करना है करो, डू द नीडफुल, डोंट थिंक मुझे क्या लगेगा, मैं शायद चिल्लाऊंगा बीच में कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम करते रहना, मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा चीखूंगा पुकारूंगा नहीं नहीं बोलूंगा, मुझे ही क्यों ऐसे बोलूंगा, लेकिन भगवान उस समय आप मेरी वो सुनना नहीं, वो मेरे ऐसे ही कंडीशनिंग है इसलिए मैं बोलता रहूंगा, लेकिन आप मेरे लिए जरूरी है वो करते रहना, डोंट स्टॉप, ये प्रार्थना कीजिए आप भगवान से, क्योंकि वो जब संकट भेजते हैं तो संकट का सामना करने का बल भी आपको देते हैं। हमारे दिन बंधु जी हमेशा मेल भेजते हैं हमको, उसमें लिखते हैं इफ ही हैज पुट यू इन इट ही विल टेक यू थ्रू इट, क्या बोलते हैं उसका, गॉड ब्रिंग्स यू टू इट ही विल ब्रिंग यू थ्रू इट ऑल्सो। अगर आपने भगवान ने आपको किस स्थिति में डाला है संकटमय स्थिति में तो वही आपको उसमें से निकालेंगे, जब निकालेंगे ना तो आपका बढ़िया कल्याण करके निकालेंगे, ऐसा दर्द नहीं देंगे आपको बेकार में। जो भी वो करते हैं अपने प्रिय भक्त के लिए बड़े सोच समझ के करते हैं, उसको तैयार करते हैं अपने धाम में ले जाने के लिए, योग्य बनाते हैं उसके। तो हम सब लोग यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जो करना है कीजिए निश्चिंत होकर, हाँ थोड़ा सा डर लगेगा आपको ऐसे बोलने में, लेकिन डरो मत, डोंट वरी, थोड़ा सा आपको लगेगा अरे प्रभु जी हमको बहुत ज्यादा ही खींच रहे हैं तो धाम में बुलाते हैं, बाद में बोलते हैं भगवान ठोको इनको अच्छा प्लानिंग है इनका, चल लड्डू वड्डू खिलाते महाप्रसाद, बाद में बोलते ठोको इनको लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ कोई कैसा है ना, जो होता है ना पहलवान, उसको पहलवानी करनी होती है पहले तो लड्डू खिलाने पड़ते हैं, फिर बोलते देखो एवरी और एक पहलवान सामने खड़ा है उसे युद्ध करना है आपको पहले उसको दूध दही मक्खन खिला के लड्डू खिला के बहुत वर्जिश करके मालिश करा के लाल माटी में, अरे बोले क्या मजा आ रहा है, बहुत पहलवानी बहुत अच्छी चीज़ है। बाद में वो देखो खड़ा है उसके साथ आपको लड़ना है, इसके लिए आपको इतना लड्डू खिलाया था, लेकिन वो काम आएगा आपको, जो लड्डू वड्डू खिलाया वर्जिश किया है वो आपको काम आएगा, और थोड़ा सा आप चुस्त भी बनेंगे और उसकी क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस भी बनेगी, आपको अनुभव भी आएगा कि कैसा होता है युद्ध। वैसे मायादेव आपके सामने खड़ी है, और भगवान के साथ से सहारे से हम माया देवी के सभी जो टेस्ट हैं उसको पास करके भगवान को मिल सकते हैं। माया देवी हमारे दुश्मन नहीं है, माया देवी हमको खाली तैयार करती है, हाँ बनाती है अच्छी तरह से। उसका बहुत औजार है, किले हैं, इसके हथौड़ा है, सब कुछ मार पीट के वो ठीक कर देती है, बराबर फिट कर देती है अपने को। तो इसलिए यहाँ पर की जो लीला है उसको बताएंगे। ये अंजनपुर गांव है, हाँ अंजनपुर यानी कि अंजन वन, ये विशाखा सखी का गांव है। विशाखा सखी भगवान की दूसरे नंबर की प्रिय सखी है। उनके पिताजी का नाम सत्य भानु है, उनकी माता जी का नाम नवयौवनी देवी है, नवयौवनी देवी। और उनका जन्म जो है वो राधा रानी के जन्म के दिन ही हुआ था। चल रहा है ना वो, राधा रानी के दिन ही, मतलब भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। और वो यहाँ रहती है, उनका गांव है। उनका जो गोत्र है वो कौंडिन्य गोत्र है। और इनकी विशेषता ये है कि इनका जो कलर है वो विद्युत जैसा है, लाइक क्या कहते हैं उसको, बिजली, बिजली जैसा है उसका रंग। वस्त्र भी ऐसे बिजली जैसे चमकदार पहनते हैं वो, कृष्ण भगवान को रिझाने के लिए। उनकी विशेषता क्या है कि जो बड़ी पंडित हैं वो, उनकी उनके पिताजी भी बहुत पंडित हैं, इसलिए वो भी बहुत शास्त्र में निपुण हैं। और इनकी विशेषता यह है कि जो आप भगवान की जब श्रृंगार करते हैं ना, तो आप देखेंगे राधा गोपीनाथ जाएंगे या तो यहाँ पर जाएंगे, इधर भी देखेंगे तो चेहरे में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर नक्शी का डिजाइन बना देना अलग अलग रंग के, उसको पत्रावली कहते हैं, पत्रावली। वो पत्रावली भगवान और राधा रानी के शरीर में, चेहरे में, सब जगह हाथ पे लगाते हैं ना आप, देखें कृष्ण बलराम में पैरों पे भी डिजाइन बनाते हैं, है ना, अलग अलग रंग के बनाते हैं। वो सारे पत्रावली बनाने में विशाखा देवी बहुत निपुण है। वीणा इनका बहुत प्रिय वाद्य है, सारंग राग जो है, राग सारंग वो इनका प्रिय राग है। सारंग के कई प्रकार होते हैं, मध्वाद सारंग होता है, शुद्ध सारंग होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के सारंग राग होते हैं, बहुत सुंदर राग है ये। ये इनका सबसे प्रिय राग है जिसमें वो भगवान को रिझाती है। और इनकी और एक विशेषता है कि राधा कृष्ण का मिलन किस किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में हमेशा वो चिंतन करती रहती है, अलग अलग प्रकार सोचती रहती है कि कैसे इनका मिलन किया जाए, कैसे इनको किस जगह पर क्या किया जाए, कैसे कैसे किया जाए। और फिर वो जो कल्पना उनके मन में आती रहती है वो वृंदा देवी को बताती रहती है वो, और वृंदा देवी उस प्रकार से अपनी योजना बनाती रहती है। वृंदा देवी इज एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, और विशाखा देवी इज अ डायरेक्टर, वो विचार बनाती है, वृंदा देवी इसको एग्जीक्यूट करती है, डिस्कस करते रहते हैं हमेशा। और विशाखा देवी जो है उन्हीं का विस्तार है जमुना देवी, विशाखा देवी का ही वो विस्तार यानी कि एक्सपांशन है, जो जमुना देवी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होती है नदी के रूप में। वो उनकी उनकी राधा कृष्ण भगवान की पत्नी भी बन जाती है बाद में, और ये सखी हैं भगवान की। तो ये बहुत ही निपुण गोपी हैं और हमेशा सोचती रहती है कैसे भगवान की सेवा की जाए। जब भी कोई वाद विवाद होता है तो ये शांत करने में बहुत एक्सपर्ट है। ललिता देवी जरा सा सामने रहती है सेनापति के रूप में, कभी जब होता है ना नोक झोंक तो ललिता देवी सामने आती है कृष्ण से बहस करने के लिए तुरंत, विशाखा देवी जरा शांति करने के लिए रहती है। तो ये जो जगह आप बैठे हुए हैं बहुत सुंदर विशाल कुंड है ये, हाँ इसमें इसका नाम किशोरी कुंड है। यहाँ पर राधा कृष्णा गोपियाँ सखीनारे में बहुत लीला करते हैं, ये उनकी मिलन स्थली है। हाँ मुझे इस स्थान अच्छे को लगता है कि यहाँ पर कोई कमर्शियल नहीं, कोई दुकान, कोई ये वो कहीं पंडा विंडा ऐसा कुछ है नहीं। आराम से बैठो, भजन करो, आनंद लो जगह का, लीलाओं का, कथा करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, देखो कोई डिस्टर्ब किया आपको यहाँ पर, कोई नहीं, आराम से बैठे सब लोग। इसलिए ऐसी अंतरंग जगह पे आना चाहिए, यही ब्रज का आनंद है जो आपको मिल सकता है। ब्रज का, ब्रज क्या है, उसका क्या अनुभव है, उसका आपको अनुभव जो है वो इस जगह पे मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने कामेवन में आप लोग सब लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आए थे, वहाँ पर मैंने बताया था कि भगवान जो बंसुरी बजाते हैं उसमें आठवीं धुन में केवल राधा को पुकारते हैं, है ना, आठ धुन में आठ चीजें होती हैं, आठवें धुन में केवल राधा को पुकारते हैं, वो धुन केवल उसको सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर मिलने का समय तय था, कृष्ण भगवान आके रुके थे, राधा रानी मिलने के समय को मिलने के लिए श्रृंगार हो रहा है उनका बरसाने में, सब सखियाँ लगी हुई हैं, लेकिन देर हो रही है और समय हो गया तो कृष्ण भगवान यहाँ से बंसी बजा देते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आपको आना चाहिए। तो व्याकुल हो जाती एकदम, अरे कृष्ण भगवान, तो फिर जल्दी जल्दी करने लगते, टाइम हो गया टाइम हो गया, उसमें वो श्रृंगार अधूरा रहता है, वो भागवा के यहाँ पे आ जाती है। तो जैसे ही आती है यहाँ पर तो कृष्ण भगवान हंस पड़ते हैं उनको देख के, बोले क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, आपने तो काजल लगाया नहीं आज, सब कुछ किया है लेकिन काजल लगाने को भूल गई, चलो अभी जाते हैं वापस, अब काजल लगा के आते हैं, कोई बात नहीं, कोई आ गई हो अभी विरह सहन नहीं होगा मुझे, काजल मैं आपको लगा दूंगा। तो इस अंदर एक शिला है यहाँ पर, हाँ कजरोटी शिला कहते हैं, काजल काजल शिला कहते हैं उसको, उस पर उन्हें उंगली घिसा फिर काजल प्रकट हो गया। तो अपने हाथों से दिव्य कर कमलों से उंगलियों से भगवान ने राधा रानी के सुंदर कमल नयन नेत्रों को काजल लगाया और उनका श्रृंगार पूरा कर दिया। फिर उन्होंने भी अपने हाथ से काजल निकाला और कृष्ण भगवान को लगाया। तो ऐसे अंजन शिला यहाँ पर है, भगवान हमारे जीवन में जो भी कमी आए पूरी कर देते हैं, पहले भी हमने बताया था जो भी, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो हमेशा कमियों से त्रुटियों से भरा रहता है। कोई भी व्यक्ति जो है हर चीज में हर वस्तु में निपुण नहीं हो सकती है, हर एक व्यक्ति में कोई एक चीज में निपुण होगा, कोई बिजनेस करने में निपुण होगा, कोई गाने में निपुण होगा, कोई भोजन करने में होगा, कोई एक एक कला एक एक व्यक्ति में कोई व्यक्ति निपुण हो सकता है, लेकिन सभी चीजों में कोई निपुण नहीं हो सकता है। इसलिए कमियां ही हमारे जीवन का एक मूल अंग है, वी हैव गॉट सो मेनी डेफिशिएंसीज, हम जानते भी है, कुछ जानते नहीं कुछ जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन अगर हम भगवान के प्रामाणिक भक्त बन जाते हैं तो हमारी सारी कमियां भगवान पूर्ण कर देते हैं। योग क्षेम मतलब क्या होता है, कई बार हमने श्लोक बताया आज, योग क्षेम भाम्यम, योग का मतलब है कि आपके पास जो नहीं है वो आपको दे देते हैं भगवान, और आपके पास जो है उसको बनाए रखते हैं, दोनों जरूरी है ना, तो यहां से दे रहे हैं यहां से जा रहे हैं तो फायदा क्या उसका नहीं, जो आपके पास भक्ति के लिए अनुकूल साधन है उसको वो बनाए रखते हैं मेंटेन्ड, और जो भक्ति के लिए आपके जीवन में नहीं है, जो कमजोरी है आपको, वो भगवान पूरी कर देते हैं। लेकिन अनन्यस चिंतयन्तु माम, ये जरूरी है, उनकी अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अनन्य का मतलब क्या आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि भगवान के संतुष्टि के अलावा और कोई कार्य नहीं करना है, भगवान के लिए ही कार्य करना है, अकर्म उनके ही संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए करना है, उनके लिए ही करना है, उसके अलावा कोई अभिलाषा मन में रखनी नहीं है। ऐसे कार्य करेंगे तो भगवान फिर अपना जिम्मा हमारा जिम्मा अपने पास ले लेते हैं, जो भी हमारे पास है उसको बनाए रखते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको पूरा कर देते हैं। राधा रानी का क्या गुण है यहाँ पर, क्या श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि वो तन मन आत्मा आत्मा का आत्मा आत्मा का आत्मा और सूक्ष्म आत्मा से लेकर अंदर तक जो उनका है सब कुछ भगवान के लिए समर्पित है, तुरंत भगवान उसकी पूरी कर देते हैं। अभी उनके लिए क्या है, पत्थर में क्या होता है, लेकिन उन्होंने पत्थर को सोचा कि काजल आना चाहिए, काजल निकल गया उसमें से, एक तो अद्भुत वस्तु है ना ये, आप करिए इस पत्थर को हाथ लगाइए कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, लेकिन जब भगवान कुछ चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, एनी थिंग यू कैन डू। बृहद भागवतम में लिखा है कि वो सृष्टि का चक्र उल्टा कर सकते हैं अगर आप उनकी इच्छा हो तो, एक रात के अंदर अगर ब्रह्मा जी के एक रात का आनंद वो ठोस के भर सकते हैं, वो केवल एक व्यक्ति कर सकते हैं, वो कृष्ण भगवान, कोई देवता नहीं कर सकते, कोई भगवान का दूसरा अवतार नहीं कर सकता ऐसा, केवल परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम स्रोत जो है श्री कृष्ण भगवान वो ये कर सकते हैं। एक दुनिया की रात में 24 घंटे के 12 घंटे के रात में ब्रह्मा जी की एक रात का आनंद वो समेट सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो है ही वैसे, इसलिए उनका ही सहारा लेना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं वो, जो हमारे जैसे कि वो ब्राल बालों को पता नहीं था कि ये गिरिराज को उठाएंगे अभी, बोले भी क्या करेंगे, जो उनकी कल्पना के सीमा के अंदर भी नहीं थी वस्तु, उसकी कल्पना के बाहर थी पूरी, वैसे उन्होंने अचानक झट से उसको उठा लिया, अरे ऐसा भी होता है क्या, वाह ऐसे अद्भुत बातें भगवान करते। वागासुर के अंदर गए, वो निकल लिया उसने अगर सुनने, सब देवता सोच रहे मर गए भगवान, अभी गए खत्म हो गए, कुछ देर बाहर आ गए वागासुर का खत्म करके खुद बाहर आ गए। इतना बड़ा घोड़ा आया, इतना बड़ा घोड़ा आया कि जैसे सबका वर्णन सेम सेम लगता है हमको, भूकंप हो रहा है और आकाश में बादल यहां से आ रहे हैं, हरिकेन तूफान आ रहा है, उसके मुंह में हाथ डाला उसने, ऐसे ही रखा हाथ, थोड़ा बड़ा कर दिया, घोड़ा खत्म। ऐसे अद्भुत जो कार्य है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये भगवान कर सकते हैं। और जो कृष्ण लीला हम पढ़ते हैं उसके अंदर सारी जो जय श्री राधे श्याम महाराज जी, ऐसा मत करिए आप ब्रजवासी हो, ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य जो है वो ठाकुर जी करते हैं, और जो उन्होंने कृष्ण भगवान ने जो ब्रजलीला में किया है वो हमारे लिए एक प्रमाण है, और वो ब्रजलीला आपके जीवन में हो सकती है अगर आपको श्रद्धा है तो। आप उनको मौका दो खाली बस कि डू द नीडफुल, ऐसा बोलो एक बार हृदय से, डरो मत, तो फिर वो करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे आप। क्या कर नहीं सकते हो, भक्तों के जीवन में से कई अनुभव है। इस्कॉन के अंदर ऐसे विश्व भर के भक्त हैं, वो क्या क्या कहानी बताते हैं, आपको दंग रह जाएगा आप सुनकर। कैसे कैसे पुस्तक वितरण कर रहे, रस्ते में कर रहे हैं, कोई भयंकर आदमी आता है पुलिस को लेके मारने का प्रयास करता है और क्या चमत्कार होता है अचानक, उसे कई कहानियां हैं उनकी, जो उनको विश्वास हो गया है, अनुभव हो गया है, फिर वो कभी हिलते नहीं है, तो भगवान हमारे साथ में है, डरते नहीं कभी। फिर तो यहाँ पर हमको भगवान से प्रार्थना करनी है, इसलिए मैं आपको कहा कि पहले सुनिए फिर दर्शन कीजिए, फिर दर्शन में आपको पूरा लाभ होगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि ये अंजन, यानी कि आप अंजन लगाए ना आप में, तो ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संत हृदय सदैव हृदयेशु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। संत लोग हमेशा भगवान का दर्शन करते रहते हृदय में अपने, हाँ सदैव हृदयेशु विलोकयन्ति, कैसे किधर भी रहेंगे तो हृदय में भगवान का दर्शन हमेशा करते रहते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंख में प्रेम का अंजन लगाया है। ये प्रेम का अंजन बहुत जरूरी है जो गुरु महाराज हमको देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान अंजन ज्ञान अंजन शलाकया, ये ज्ञान अंजन जो है गुरु महाराज, हम लोग सब अज्ञान में जन्म लिए हुए हैं, अंधकार में, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, हम अपने शरीर को अपना समझते हैं, मैं शरीर हूँ ऐसा समझते हैं, अहम ममेति, लेकिन हम आत्मा है, हम भूल गए हैं, अंधकार में अज्ञान में हैं। तो गुरु महाराज, जैसे मैंने पहले कहा था इसी कथा में, कि जो हमको अनुग्रह करते हैं तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को निकाल देते हैं, और ज्ञान शलाकया, ज्ञान के अंजन से शला का मतलब किरण, हमारे जीवन में फैला देते हैं, जिसके माध्यम से हमको जो सत्य है वो ठीक से दिखाई पड़ता है, एज इट इज इन द लाइट। तो यहां पर हम वो भी भिक्षा मांग सकते हैं कि आपने यहां पर तो स्वतः ही अंजन उत्पन्न किया है, कृपा करके हमारे भी नेत्रों में, हमारी भी आत्मा में आप वो अंजन लगाइए, जिससे आपका हम यथारूप दर्शन कर सकते हैं, जैसे आप है वैसे हम समझ सकते हैं आपको, तत्वतः समझ सकते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो सकता है। बहुत अच्छी प्रार्थना कीजिए। अंजन बिहारी जी बहुत कृपालु हैं, विशाखा देवी के गांव में विराजमान हैं, सुंदर सुंदर लीला करते हैं, भक्तों को रिझाते हैं और साथ साथ में बोध भी देते हैं और हमारी उन्नति भी कराते हैं। श्री राधा अंजन बिहारी जी महाराज की, अंजनों गांव की, विशाखा देवी की, नीताय गौर प्रेमानंदे। बैठे रहिए जरा।
हरे कृष्ण।